संयुक्त राष्ट्र रेडियो से आप सुन रहे हैं साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 11 सितंबर 2020 के इस बुलेटिन की सुर्खियां। कोविड 19 की वैक्सीन के लिए धन जुटाने में तूफानी तेजी की दरकार, कहा यूएन प्रमुख ने। भारत में कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में यूएन एजेंसियां कर रही हैं मदद। कोविड 19 ने डाली नौनिहालों की जिंदगी खतरे में। और यूएन महासभा के आगामी सत्र से जुड़ी खबरों के साथ साथ कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है यूएन न्यूज रीडर। अब समाचार विस्तार से। वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं ने कोविड 19 के संक्रमण के ऐसे परीक्षण किटों, दवाओं और टीकों का विकास तेजी से करने के प्रति अपना संकल्प व्यक्त किया है, जो किसी भी जरूरतमंद इंसान को हर जगह उपलब्ध हों। इन नेताओं में 30 से अधिक देशों के मुखिया और मंत्री शामिल थे। गुरुवार को जारी एक वक्तव्य में उन्होंने $35 अरब की और राशि जुटाने का भी संकल्प लिया। कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए चिकित्सा उपकरण व दवाएं मुहैया कराने के मिशन ACT एक्सेलरेटर को आगे बढ़ाने के लिए अभी इतनी ही राशि की दरकार और होगी। इस मिशन के तहत दुनिया भर में कोविड 19 से बचाने वाले टीके की 2 अरब खुराकें, 24.5 करोड़ उपचार किटें और 50 करोड़ परीक्षण किटें तैयार की जानी हैं। ACT एक्सेलरेटर अभियान अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था और उसके बाद से इस मिशन के लिए केवल $2.70 अरब की धनराशि प्राप्त हुई है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने बैठक को अपने संबोधन में अपील करते हुए कहा कि मिशन के लिए धन जुटाने के वास्ते नाटकीय तेजी दिखानी होगी, ताकि दुनिया फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे बढ़े, सामान्य कामकाज में जुट जाए और फिर से समृद्धि के रास्ते पर चल सके।
In traditional humanitarian and ODA budgets, donors must go deep into the
महासचिव कह रहे थे कि हमें ये धन परंपरागत मानवीय सहायता बजट में नहीं मिलेगा। दानदाताओं को उस बजट में और ज्यादा गहराई से झांकना होगा जो COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मंजूर किया गया है। संसाधनों का इस तरह सदुपयोग किए बिना इतना धन इकट्ठा नहीं किया जा सकता जिसकी हमें जरूरत है, इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस समय तक 170 से ज्यादा देश कोविड 19 की वैक्सीन बनाने की मुहिम में शामिल हो चुके हैं। इस मिशन के 4 स्तंभों में से एक देशों को साथ लेकर चलना भी है। कोविड 19 के 10 वैक्सीन टीकों का फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है, उनमें से 9 क्लिनिकल परीक्षण के स्तर पर पहुंच चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम गेब्रियसिस ने धनराशि जुटाने में तेजी लाने के लिए दलील पेश करते हुए कहा कि कोविड 19 के कारण आज भी हर दिन लगभग 5,000 लोगों की मौत हो रही है। उधर वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस वर्ष $खरबों का नुकसान होने का खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने वैश्विक महामारी कोविड 19 का मुकाबला सामूहिक रूप से करने और महामारी के दौरान जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। क्षेत्रीय समिति का 73वां सत्र गुरुवार को वर्चुअली संपन्न हुआ, जिसकी मेजबानी थाईलैंड ने की और इसमें शिरकत करने वाले मंत्रियों ने इस आशय के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सभी सदस्य देशों ने सामूहिक रूप से कोविड 19 से लड़ने का संकल्प लिया और महामारी की जवाबी कार्रवाई के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बेहतर उपकरणों वाली मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियां बनाने का फैसला लिया। क्षेत्रीय समिति के 73वें सत्र के दूसरे और अंतिम दिन एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों व प्रतिनिधियों ने कलेक्टिव रिस्पांस टू कोविड 19 नामक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। थाईलैंड की मेजबानी में आयोजित ये सम्मेलन कोविड 19 महामारी के कारण पहली बार वर्चुअल मंच पर आयोजित किया गया था। गोलमेज चर्चा के दौरान सभी सदस्य देशों ने विभिन्न कोविड 19 प्रतिक्रिया उपायों और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने और महामारी के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की। सभी देशों ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने के महत्व पर सहमति जताई, जो कोविड 19 से मुकाबला करने सहित आमजन की अन्य जरूरतों के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुलभ कराने के लिए उपयोगी हों। घोषणा पत्र में सभी देशों से अपील की गई है कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहें और वर्तमान महामारी को अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाने व सतत पुनर्निर्माण करने के अवसर के रूप में देखें। सदस्य देशों ने आमजन के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए महामारी के दौरान और बाद में निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने पर भी सहमति व्यक्त की। देशों ने डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाकर स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को मजबूत करने का संकल्प लिया, जिससे नीतिगत निर्णय के लिए प्रकोपों की सामयिक सूचना साझा हो सके।
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 संक्रमण के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश के अनेक राज्यों में गंभीर हालात के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां भारत सरकार के साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महामारी से निपटने की कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं को पुख्ता बनाने, बचाव उपाय अपनाने और हालात की समीक्षा सहित अन्य प्रयासों में जुटी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या अमेरिका में है, जिसके बाद भारत और फिर ब्राजील का स्थान है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,80,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 72,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रमितों के संपर्क में आए 80,00,000 से ज्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद की है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण प्रयासों के संदर्भ में 22,00,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने निजी बचाव सामग्री व उपकरणों की देश भर में आपूर्ति करने के काम में मदद की है। सबसे निर्बलों तक सहायता पहुंचाने के प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अहम भूमिका निभाई है। राहत प्रयासों के तहत करीब 1,00,000 प्रवासी कामगारों तक सामाजिक संरक्षा के लाभ पहुंचाना संभव हुआ है। साफ सफाई के काम में जुटे 1,00,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को बचाव किटें और 40,00,000 किलो राशन का वितरण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने 5,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित कचरा निस्तारण से जुड़े विषय पर प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा मुश्किल हालात का सामना कर रही महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन डायरेक्टरी की सुविधा भी विकसित की गई है और तालाबंदी के दौरान प्रजनन व यौन स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों में गिरावट लाने में दशकों की प्रगति पर कोविड-19 महामारी का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से इस वैश्विक संकट के दौरान बच्चों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की अपील की है। वर्ष 2019 में 5 साल से कम उम्र में बच्चों की मौतों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई थी। 1990 की 1,25,00,000 से ये संख्या घटकर 2019 में 52,00,000 रह गई थी, लेकिन बुधवार को जारी नए अनुमान में आशंका जताई गई है कि महामारी के कारण नवजात शिशु और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं में आए व्यवधानों की वजह से ये संख्या बढ़ सकती है। कोरोना वायरस संकट के दौरान स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और प्रसव पूर्व व प्रसवोत्तर देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार इसका मुख्य कारण संसाधनों की कमी होना और कोविड-19 संक्रमण की आशंका की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में हिचक है। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टैलिटी नामक ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक समूह ने जारी की है। UN एजेंसियों के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में बच्चों की मृत्यु के कारणों की रोकथाम व इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं ने लाखों जीवन बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। शिक्षा एक बुनियादी मानवाधिकार और शांति व विकास की दिशा को आगे बढ़ाने का एक मजबूत पहिया है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों, छात्रों और शिक्षण केंद्रों पर हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने स्कूलों और शिक्षण केंद्रों पर होने वाले हमलों पर क्षोभ जाहिर करते हुए बताया कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच ऐसी 11,000 घटनाएं दर्ज की गईं। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
9 सितंबर को विश्व में पहली बार हमलों से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और इस अवसर पर बुधवार को एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूएन प्रमुख ने कहा कि हिंसा के लाखों बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखने के अलावा अन्य गंभीर नतीजे होते हैं। बच्चों की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती है, शिक्षा में लंबा व्यवधान आता है, सशस्त्र गुटों में बाल सैनिकों के रूप में भर्ती होती है, लड़कियां कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें यौन हिंसा का भी शिकार होना पड़ता है। यूएन प्रमुख ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे हमले जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने चुनौती की विकरालता को बयान करते हुए बताया कि सबसे गंभीर घटनाओं में स्कूलों पर सीधे हमले होते हैं। आगजनी, जमीनी और हवाई कार्रवाई, लूटपाट और विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि हम स्कूलों पर सैन्य कब्जा देख रहे हैं, जिससे स्कूलों का नागरिक प्रतिष्ठान दर्जा खत्म हो जाता है और इस तरह सैन्य निशाने के तौर पर हमले के खतरे का सामना करना पड़ता है। सोमालिया में एक सामाजिक कार्यकर्ता फैसल नूर अली अपनी पढ़ाई जारी रखने में सफल रहे, लेकिन उन्होंने स्कूलों को निशाना बनाए जाने से होने वाली तबाही को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। उनका कहना है कि हमें कक्षाओं को सुरक्षित स्थल बनाने का संकल्प लेना होगा, जहां पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे फल फूल सकें और उज्जवल भविष्य की ओर देख सकें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने हर एक व्यक्ति के लिए हिंसक संघर्ष के दौरान भी पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए सरकारों का आह्वान किया है। 100 से ज्यादा देशों ने सुरक्षित स्कूल घोषणा पत्र को अपना समर्थन दिया है, लेकिन यूएन प्रमुख के मुताबिक इस संबंध में ज्यादा कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि सभी आमजन के लिए शिक्षा के प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं, हिंसक संघर्ष के दौरान भी और विशेषतः शरणार्थियों और विस्थापितों जैसे सबसे कमजोर तबकों के लिए भी।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने कहा है कि यमन में जारी हिंसा के कारण देश बदहाल हालात में है और लोग पीड़ा में जीवन गुजार रहे हैं। साथ ही उन्होंने संदिग्ध युद्धापराधों के मामलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अपील की है। यमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय विशेषज्ञों के समूह की सदस्य मलिसा पार्के ने बुधवार को बताया कि यमन जिस तरह से बर्बाद हुआ है उससे मानवता के जमीर को ठेस पहुंचनी चाहिए। यमन 6 साल से सशस्त्र हिंसा का सामना कर रहा है, जिसमें कोई रुकावट नहीं आई है और इसकी चपेट में आए लाखों करोड़ों लोगों की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। ये लगातार 3रा वर्ष है जब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघनों के मामलों का पता चला है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि इनमें से कुछ मामलों को युद्धापराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। यूएन द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट पर एक बयान जारी करते हुए बताया कि हिंसा में शामिल सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, लोगों की जिंदगियों, उनकी गरिमा और अधिकारों के प्रति बेपरवाह हैं और इसकी पीड़ा आम लोग झेल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र मंगलवार 15 सितंबर को शुरू हो रहा है, जिसकी बागडोर तुर्की के राजनयिक और नए महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर के हाथों में होगी। यूएन महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि वो अगले महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर के साथ मिलकर 75वें सत्र में उच्च स्तरीय आयोजनों की तैयारियों में जुटे हैं। अगले सत्र में 30 सितंबर को जैव विविधता पर एक शिखर वार्ता और 1 अक्टूबर को महिलाओं पर 4थे विश्व सम्मेलन और बीजिंग घोषणा पत्र व प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ पर एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 2 अक्टूबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, जो शांति व सुरक्षा पर यूएन के कामकाज का अहम हिस्सा है। महासभा के 75वें सत्र के बारे में प्रासंगिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र भी 15 सितंबर को शुरू हो रहा है। इसी संदर्भ में हर वर्ष स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राएं संयुक्त राष्ट्र के मॉडल सत्र आयोजित करते हैं, जिन्हें मॉडल यूनाइटेड नेशंस यानी MUN कहा जाता है। विद्यालयों में आयोजित ये MUN भावी पीढ़ी को विश्व मंच से जोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझने में किस तरह मदद करते हैं, यही जानने के लिए हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र के भारत और भूटान के लिए राष्ट्रीय सूचना अधिकारी और भारत में संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र यूनिक के ऑफिसर इंचार्ज राजीव चंद्रन के साथ ये बातचीत की।
ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ और इसके पीछे क्या सोच थी?
जो संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यवाही है वो तरीके से एक यूनिक फॉर्मेट पे चलता है, चाहे वो जनरल असेंबली की मीटिंग्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हो या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की मीटिंग्स हो। UN में जो मीडिया है उसका काम भी कुछ अलग सा ही होता है। तो इसको किस तरह हम युवा तक पहुंचाएं, ये शुरू से ही UN में सोच निकला था और आई थिंक 1950 से ही मॉडल UN सारे विश्व में ऑर्गेनाइज होने लगा और भारत में ये सबसे पॉपुलर है कि विश्व में आप देखिए तो सबसे ज्यादा मॉडल UN कहीं भी भारत में ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और मकसद एक ही है, किस तरह स्कूल के बच्चे स्टूडेंट्स उन्हें ये सीख मिले कि यूनाइटेड नेशंस की प्रोसेसेस कैसी हैं, वहाँ चर्चाएं कैसी होती हैं, वहाँ की कमिटीज कैसे बैठती हैं, उनमें क्या क्या डिस्कस होता है, किस प्रकार के कंसेंसस बनता है और किस प्रकार के UN के रेजोल्यूशंस तैयार होते हैं।
तो भारत जो है वो युवाओं का देश है, बढ़ती आबादी में ज्यादा प्रतिशत युवाओं का है, तो ऐसे में MUN आने वाली पीढ़ी के बीच जागरूकता बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। तो किस तरह के बदलाव आपको इससे देखने को मिल रहे हैं?
मॉडल UN में क्या होता है कि हर एक विद्यार्थी को किसी एक देश को अपनाना पड़ता है। फर्ज कीजिए कि मैं साउथ अफ्रीका का डेलीगेट बना हूँ एक मॉडल UN कॉन्फ्रेंस में। साउथ अफ्रीका का ज्योग्राफी भूगोल कैसा है, वहां का इतिहास कैसा है, वहां के जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस कैसे हैं, वहां क्या बनता है, क्या निर्यात होता है, क्या उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां के नियम क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां कितने ट्राइब्स हैं, ये सब पहले सीखना होगा। इससे क्या होता है, एक सहृदयता आती है साउथ अफ्रीकन लोगों से और इसी फीलिंग को मॉडल UN कॉन्फ्रेंसेस बढ़ाते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं एक फॉर्मल फोरम में उस कंट्री का डेलीगेट बनकर। तो एक वैश्विक एटीट्यूड, ग्लोबल थिंकिंग, ग्लोबल सिटीजन का एटीट्यूड बकायदा बन जाता है।
तो इस साल संयुक्त राष्ट्र अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दुनिया भर के युवाओं से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत में MUN के जरिए किस तरह संवाद स्थापित कर UNH75 के लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश की जा रही है?
जैसे मैंने आपसे कहा कि भारत में विश्व में कहीं भी सबसे ज्यादा MUN ऑर्गेनाइज होते हैं और इस साल हमने ये किया है कि जो भी मॉडल UN ऑर्गेनाइज हो रही है उनमें हमने एक संयुक्त राष्ट्र प्लेनरी सेशन इंट्रोड्यूस किया है और इस प्लेनरी में जो UN के फ्यूचर के बारे में मुद्दाएं हैं, किस तरह का संयुक्त राष्ट्र 75 साल में है होगा और 100 साल बाद 25 साल और के बाद जब UN 100 साल का हो जाएगा तो उस वक्त UN की क्या उत्तरदायित्व होनी चाहिए, इन मुद्दों पे युवाओं को हम सोचने के लिए सिखा रहे हैं, उन्हें सोचने के लिए कैटलाइज कर रहे हैं। और ये जो सेक्रेटरी जनरल का ग्लोबल डायलॉग है, भारत में जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसीज हैं उन सब ने मिलकर इस पे काम किया, इसको बढ़ोतरी दी और युवा लोगों को प्रोत्साहन दिया अपने थॉट्स को ग्लोबल फोरम में।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। वैश्विक समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट पर अवश्य आइए news.un.org/hi। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।